ओम शांति। आदरणीय शीलू बहन जी से भक्ति का लक्ष्य लेंगे और साथ ही अमृत वेला जो वरदानों का समय है इस तपस्या भूमि में उसका महत्तम फायदा लेकर के हम शक्तिशाली योग की अनुभूति यहाँ से लेकर के कैसे जा सकते हैं इस विषय पर आप अपना मार्गदर्शन देंगी। आदरणीय शीलू बहन 50 से भी अधिक वर्षों से ईश्वरीय सेवा में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आपकी एक बहुत बड़ी विशेषता ये रही है कि जैसे ही राजयोग शिविर का शुभारंभ हुआ हमारी प्राण प्यारी प्रकाशमणि दादी जी ने मधुबन में शिविर की शुरुआत करवाई और सबसे पहले मधुबन निवासियों में और यज्ञ में भी आदरणीय शीलू बहन ने यहाँ शिविर कराना शुरू किया। इसके अलावा बाबा ने आपको एक माध्यम के रूप में वैरायटी सेवाओं में यूज किया है जिस समय ये पीस ऑफ माइंड और अन्य टीवी सीरियल्स नहीं थी। सबसे पहले टीवी पर बाबा का संदेश देने के लिए आप ही माध्यम बनी हैं। वर्तमान समय आप यहाँ मधुबन में ही रह करके काफी सारे कारोबार में अपना योगदान दे रही हैं और विशेषकर हमारी एजुकेशन विंग में मधुबन कोऑर्डिनेटर के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी, एक ऐसा माध्यम प्यारे बाप दादा का हम सबके बीच आज है जिसको बाबा ने हमेशा ही नवीन सेवाओं के लिए उपयोग और प्रयोग किया है। हम एक हाथ की ताली से आदरणीय दीदी जी का तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। आदरणीय दीदी जी
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी महादेव नगर तथा उससे संबंधित सेवा केंद्रों के भाई बहने आज से यहाँ 3 दिन की भट्ठी करेंगे। तो जैसे हमारी कृति बहन ने बताया कि इस वर्ष की सबसे पहली भट्ठी डबल विदेशियों की सीजन के बाद आज आपसे शुरू हो रही है, तो सबसे पहले अपने लिए आप ताली बजाएंगे। बहुत ही आप भाग्यशाली आत्माएं हैं मधुबन के इस वातावरण में भट्ठी करने के लिए इतनी आत्माएं तड़पती है। आपके भी बहुत सारे सेवा केंद्र हैं, हजारों भाई बहने होंगे और उनमें से केवल आप ही चुने गए। कितनों की इच्छा होगी कि हम जाएं, लेकिन उनका चांस नहीं लगा और आपका लग गया। और किनों को परमिशन मिली भी होगी लेकिन किसी कारणवश वे नहीं आ सके होंगे और उसके बदले में कोई और आए। तो जो भी आए आप सभी बहुत बहुत भाग्यशाली हो। वैसे तो अहमदाबाद में बहुत व्यस्त रहते होंगे, लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार की सेवाएं, तो सभी करते ही होंगे, परिवार में रहकर कैसे प्रवृत्ति में रहते निवृत्त रहना, ये भी आप सब भली भांति अनुभव करते हैं। तो जरूर अनुभवों की खान होंगी आपके अंदर, पर मधुबन का अनुभव तो सबसे निराला ही है, क्योंकि मधुबन तपोभूमि है, परिवर्तन भूमि है, वरदान भूमि है। जितनी महिमा इस भूमि की करें उतनी कम है, क्योंकि यहाँ स्वयं ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दादियाँ, अनेक वरिष्ठ भाई बहनों ने तपस्या की है, तो उसी तपस्या का प्रभाव तो वातावरण में है ही। चाहे कोई नया भी यहाँ आता है वो भी ये महसूस करता है, नक्की लेक तक पहुंच करके ही उनको ऐसे लगने लगता है कि यहाँ कुछ अलग ही है। और इस रोड पर आते आते तो वो महसूसता और भी प्रखर हो जाती है, और अंदर आते तो एकदम छाप लग जाती है, उनको लगता है कि हम कोई दूसरी दुनिया में आ गए हैं। और फिर सफेद वस्त्रधारी फरिश्तों को देखते हैं तो उनको महसूस होता है ये तो अल्लाह लोगों की दुनिया है। तो इसलिए आप सब तो हो ही बाबा के अनन्य रत्न। तो यहाँ 3 दिन आप रहकर क्या लक्ष्य रखेंगे? 4 धाम की यात्रा करने तो बहुत सारे भाई बहने आते ही रहते हैं, शांतिवन में हजारों भाई बहने आते हैं, और एक दिन के लिए सुबह से शाम तक माउंट आबू में घूमते हैं, पांडव भवन में तो 1-2 घंटा ही होते हैं। 4 धाम की यात्रा करने का लक्ष्य होता है कि जहाँ ब्रह्मा बाबा ने तपस्या की, बाबा के कमरे में, झोपड़ी में, हिस्ट्री हॉल में, शांति स्तंभ पर, बाबा इन्हीं 4 स्थानों पर सुबह से रात तक बहुत विचरण करते थे। अपने कमरे में तो केवल सोने तक ही था, लेकिन दिन में तो झोपड़ी में ही बैठते थे, सुबह का क्लास हिस्ट्री हॉल में करते थे, मुरली सुनाते थे, और जहाँ शांति स्तंभ है वहाँ बाबा क्रिकेट, बैडमिंटन, वो खुला स्थान था तो ओपन ग्राउंड होने के कारण वहाँ ये आउटडोर गेम्स खेलते थे बाबा, तो बच्चे भी बाबा के साथ खेलते थे और स्टूडेंट लाइफ का अनुभव करते थे। यहाँ आकर के अपनी सारी संसार की जो प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, उन सब से पार हो जाते थे। तो बाबा हमेशा कहते हैं मधुबन आपका अपना घर है, बाप का घर सो बच्चों का घर, और अपने घर में आकर के विश्राम प्राप्त करो, क्योंकि वहाँ की भाग दौड़ की जिंदगी में से आप कुछ समय निकाल करके यहाँ आए हैं। यहाँ पर बस एक ही काम करना है, वैसे तो दिनचर्या में तो आराम भी करेंगे, भोजन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन मेन लक्ष्य एक ही होगा कि हमें तपस्या करनी है, हमें तपस्या करनी है। तपस्या के ही गीत आप यहाँ सुनेंगे, तो आपका लक्ष्य और भी पक्का हो जाएगा। परंतु केवल तपस्या नहीं, आपकी जो बैज है उसमें क्या लिखा हुआ है ऊपर से पढ़े। हाँ, क्या लिखा है? पढ़ा अच्छी तरह से। क्या लिखा है? मौन तपस्या बठी। ये मौन शब्द भूलना नहीं है? तपस्या तो आप वहां भी करते होंगे, बठियां तो आपके सेंटर्स पर भी बहुत होती होंगी, लेकिन यहाँ की विशेषता ये होगी कि मौन में रह करके तपस्या करना या बठी में रहना। तो मौन में रहना सहज है, मुश्किल है? बाबा कई बार प्रश्न करते हैं, साइलेंस में रहना, मौन में रहना सहज है या मुश्किल है? कभी बाबा ये प्रश्न करते हैं, कभी बाबा कहते हैं आवाज में आना सहज है या आवाज से परे जाना सहज है। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाए, आवाज में आना सहज है या आवाज से परे जाना सहज है, तो क्या जवाब देंगे? वैसे सहज क्या लगता है? आवाज में आना, हा? क्योंकि आवाज से परे जाने में मेहनत लगती है, क्योंकि अंदर में तो बहुत सोच चलते हैं, और जो सामने आया, जिसके सामने मुझे बोलना है, उसको बात कहनी है, तो दिल उतर कहूँ, फिर आता कि नहीं 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 मुझे मौन में रहना है, हा? तो अपने आप को कई बार जैसे जबरदस्ती भी शांत रखना पड़ता है कि क्योंकि मौन में है, तो आवाज में तो बस सहज आ जाते हैं। तो इसीलिए आवाज में आना मुश्किल नहीं है, पर मौन में रहना मुश्किल होता है, क्योंकि अंदर में बहुत विचार चलते हैं, इसलिए मुश्किल लगता है, क्योंकि जो मन में है वो वचन में लाना चाहते हैं। लेकिन मौन का मतलब ये भी नहीं है कि केवल वचन में नहीं आना है, परंतु मन में भी नहीं लाना है, क्योंकि मन में आएगा तो वचन में आएगा, फिर वो कर्म में आएगा। तो कर्म हमको क्या करना है वो तो सब निश्चित ही है। सवेरे आप उठेंगे, अमृत वेला आकर करेंगे, फिर नहा धो करके क्लास में जाएंगे, जो आपकी दिनचर्या है वो तो आपको कृति बहन सारा बताएगी। तो वो तो आपके कर्म की, या जो सुबह से रात्रि तक आपकी क्रिया चलेगी, वो तो आपको उसी नियम अनुसार आपको करना होगा। परंतु उसके पहले जो वचन है और उसके भी पहले जो संकल्प है, उस पर हमें अंकुश लगाना होगा। तो अगर वचन में अंकुश लगाना है तो मन में भी लगाना होगा, नहीं तो वचन में आ जाएगा और फिर मेहनत लगती है मौन में रहने की। तो मन में भी कोई और सोच न हो, सिर्फ मैं और मेरा बाबा, बस और कुछ नहीं। तो हम तो पहले दिन जब भट्टी में आते हैं, हम कहते हैं अपने घर वालों को, सबको इन्फॉर्म कर दो हम आराम से पहुंच गए, अभी 3 दिन मुझे कोई फोन न करे। हाँ, सबके मोबाइल स्विच ऑफ करा दिए, कहाँ गई? हाँ, सबके मोबाइल, ये छोटे छोटे खिलौने हर एक की जेब में या आपकी पर्स में पड़े रहते हैं, और कहाँ बजते हैं कुछ पता ही नहीं चलता है। पर्स माताएं खोलती है, बज रहा है, पहले तो ये नहीं पता चलता किसका बज रहा है, सोचते दूसरे का होगा, पर खुद का ही होता है। फिर चलो पता चलता है ये मेरा, तब तक बजता रहता है। फिर पर्स खोलते हैं, फिर खोलते रखा कहाँ है, फिर चलो दिखाई देता है रखा कहाँ है, अभी बंद कैसे करे वो भूल का पता नहीं चलता। इसी में 10 मिनट लग जाते हैं और मोबाइल बजता ही रहता है, बजता ही रहता है। इसीलिए पहला काम तो ये करना है कि मोबाइल स्विच ऑफ हो सकता है 3 दिन, हो सकता है? जिनका अभी से स्विच ऑफ हो गया हाथ उठाओ। अच्छा, सबने पहले से कर दिया है? सच्ची सच्ची? हाँ, तो देखो हम, वैसे तो आजकल ऑफिसेज में जाओ तो यहाँ पर वो ये जो बैज लटका है ना आपके गले में, तो कईयों का तो मोबाइल ही लटकता रहता है। तो चलो आपको गले में बैज लटका हुआ है तो कम से कम वो आदत जो पड़ी होगी तो मोबाइल तो नहीं रखेंगे। इसीलिए पहले से ही स्विच ऑफ, कोई भी आवाज, कोई भी रिंगटोन नहीं बजना चाहिए किसी भी मोबाइल का। ये आपसे विशेष अनुरोध करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमें आवाज से परे जाना है। एक हंसी की बात सुनाऊं कि एक विदेशी भाई था, तो उसने साइलेंस का बैज लगाया था, परंतु बैज लगाए साइलेंस का, मौन, और बातें कर रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि अरे भाई, तुमने अपने साइलेंस का बैज लगाया है पर तुम ही बातें कर रहे हो। तो कहते हैं ये मेरे लिए थोड़ी, ये दूसरों के लिए, कि दूसरे मेरे से बात न करें, मेरे को तो छुट्टी क्योंकि हमने लगाया, दूसरे पढ़ेंगे, मैं तो पढ़ भी नहीं सकता हूँ। अभी भी देखो, जब बताया कि आपके बैच पर क्या लिखा है, तो कईयों ने देखना शुरू किया, देखा भी नहीं होगा कि लिखा क्या है या चलो नाम लिखा होगा, लेकिन ऊपर की हेडिंग क्या है वो भी इतना ध्यान से पढ़ी नहीं होगी। परंतु खैर, अभी तो ध्यान से पढ़ लिया, तो अपने लिए है। दूसरा कुछ भी करे उसको नहीं देखना है, पर खुद को देखना है। अगर आपसे कोई बात करता भी है तो आप ये मत कहो नहीं नहीं चुप रहो, आप शांत रहो। अपने आप इशारे से समझ ही जाएगा कि उनको भी मौन में रहना है, नहीं तो आप भी आवाज में आएंगे, चुप रहो तो भी तो आवाज में आई ना, या एक्शन भी ऐसे से किया, जरूरत ही नहीं है। बस कुछ भी है, आप उनकी, उनको ऐसे शक्तिशाली शांत स्वरूप की दृष्टि देंगे, वो अपने आप शांत हो जाएगा। तो इसीलिए उसको याद आ जाएगा कि मुझे शांत रहना है। तो ये तो है, चलो बाहर की बात। लेकिन अब दूसरी बात है कि क्या लक्ष्य रखेंगे भट्ठी के अंतर्गत। ये भट्ठी है, भट्ठी माना अंदर में पकना, भट्ठी में पकना। देखो, कोई भी चीज जब भट्ठी में पकती है या आग में उसको डालते हैं, भट्ठी में आग होती है तो आग में डालते हैं, तो परिवर्तन तो निश्चित होता ही है, लेकिन जैसी चीज होती है उस अनुसार परिवर्तन होता है। मानो आप आग में मिट्टी की ईंट डालते हैं, भट्ठे पकते हैं ना, मिट्टी ईंट के भट्ठे होते हैं, अंदर बहुत आग होती है और आपने वो मिट्टी की ईंट बना करके अंदर में डाली, तो वो जो आग है वो मिट्टी को इतना स्ट्रॉन्ग घट्ट बना देती है कि जब वो ईंट बन करके बाहर निकलती है मिट्टी, तो कितनी स्ट्रांग होती है, कितनी मजबूत होती है। अगर गिराएंगे तो भी नहीं गिरेगी, अगर सचमुच मजबूत है तो। तो आग में मिट्टी पड़ी और वो इतनी मजबूत हो गई, इतने बड़े बड़े मकान देखो ईंटों के ही बनते हैं। तो इसीलिए मिट्टी ईंट बन जाती है, इतनी बिल्कुल कोई मुलायम चीज पर वो इतनी स्ट्रांग बन जाती है। तो अब आप आग में बैंगन डालो, टमाटर डालो, आलू डालो, है ना, भरता बनाते ना कुछ भी, तो वो कठोर चीज होती है, पर कठोर चीज को आग में डालो तो क्या हो जाएगा, बैंगन आलू टमाटर क्या हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, उनकी कठोरता निकल जाती है और एकदम नरम नरम हो जाते हैं। बर्था बैंगन का बनाते होंगे ना माताएं, हाँ। तो इसीलिए तो सब्जी डाली इस प्रकार की तो वो नरम हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। इसी प्रकार कोयला डालो आग में तो क्या होता है, एकदम काला काला कोयला आग में डालते ही वो राख बन जाता है, उसका रंग बदल जाता है, हाँ, इतना कठोर है वो, लेकिन वो ऐश बन जाता है ना, भभूति जैसा बन जाता है। फिर सोना डालो, इतनी खाद होती है उस सोने में, चांदी तांबा लोहा न जाने क्या, इतनी खाद होती है, इतनी अग्नि चाहिए सोने को पिघलाने के लिए, तो पहले और चीजें जो है वो पिघलती जाएगी, क्योंकि सोने का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है, बहुत ज्यादा, तो बहुत आग चाहिए, तो और जो धातु है वो पिघलते जाते हैं, और फिर सच्चा सोना निखर कर आता है। तो इसी प्रकार बाबा कहते हैं इस भट्टी में भी तुमको ये चारों प्रकार के अनुभव करने हैं। कैसे? जो हमारे एकदम कठोर कठोर संस्कार, जो कभी हाँ लगता है बहुत मेहनत करते हैं तो भी ये नरम नहीं होते, बहुत कठोर है, और उन संस्कारों को बदलना जैसे बहुत मुश्किल लगता है। कई बार एक व्यक्ति था, बहुत जोर जोर से बोलता था, बहुत जोर से, अभी किसी पास में बैठा है व्यक्ति उसके, उसको जोर से बोलने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन मैं जोर से, उसका बोलने की आदत जोर से बोलने की, तो टेलीफोन पर भी मोबाइल पर भी इतना जोर से बोलेगा जैसे सब आप सुन रहे हैं, जबकि खाली आपको टेलीफोन पर बात करनी है ना, सबको थोड़ी सुनाना है आप जो बात कर रहे हैं, लेकिन इतना जोर जोर से, यही बैठ करके आंगन में बैठ करके ही बोल रहा था। तो मैंने उसको एक बार कहा, भाई साहब थोड़ा धीरे, तो पता है क्या जवाब देता है, कहता है क्या करे बहन जी, मेरा आवाज ही ऐसा है। तो मैंने कहा आवाज ही ऐसा है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि मेरा आवाज ही ऐसा है, आप कोशिश तो करो धीरे से बोलने की। तो फिर कहता है क्या करे, मेरे माँ बाप ने ही मुझे ऐसा आवाज दिया, तो दोष किसको, हाँ माँ बाप को दोष दिया। बताओ, आवाज आपके हाथ में है ना, कि वो माँ बाप के कारण है, पर ये संस्कार बना, ऐसा नहीं कि माँ बाप का संस्कार इसीलिए आप में आई, तो आपकी अपनी चीज है, ये तो माँ बाप के संस्कार तो नहीं मिलेंगे ना। और बातों में चलो, चेहरा आपका, नाक आंख कान, वो माँ बाप के अनुसार मिलेंगे, लेकिन ये तो आपके हाथ में है, इसलिए इसके लिए माँ बाप को थोड़ी दोष देंगे। तो फिर उसको कहा कोशिश करो, कोशिश करो। बेचारा बहुत कोशिश करे पर समय लगा। तो देखो, ऐसे कठिन संस्कार वो भी भट्टी में पिघल सकते हैं बिल्कुल। जिनको बहुत बात करने की आदत है, वो ऐसा दृढ़ संकल्प करे कि मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, और विजय पाए। हाँ, आप लोगों में से कोई ऐसा बहादुर निकले, लास्ट दिन पूछा जाएगा कि ऐसा कौन था जो बिल्कुल नहीं बातचीत की इसने, उसको उसका नाम वाला होगा। मैं कृति बहन को कहूंगी कि लास्ट दिन ये जरूर पूछे कि कौन विजयी रतन निकला, जो बिल्कुल 3 दिन पूरा पूरा मौन। चलो, अगर बहुत जरूरी है तो लिख करके भी दे सकते हैं, चिटकी रख करके, पर मुख से नहीं बोलना। ऐसे भी नहीं कि चलो 4 शब्द के बजाय 1 शब्द बोल दिया, वो भी नहीं, इतना मौन, ये तो बिल्कुल योगी आत्मा बन जाएगी, पर उसके लिए मन का मौन बहुत जरूरी है। तो ऐसा कठोर संस्कार भी आपका पिघल जाए, आप ऐसे नरम हो जाओ, और या कठोर उस रूप से कि नाजुक, पर वो बदल करके स्ट्रांग हो जाओ, और कोई भी अंदर में विकृतियां, कोई कमजोरियां, कोई नेगेटिविटी, नकारात्मकता, व्यर्थ चिंतन, वो सब खत्म हो जाए, सारी खाद निकल जाए, और आत्मा सच्चा सोना बन जाए, एकदम कालिक कालापन, कोयले जैसा कालापन, वो भी सब खत्म हो जाए, और आत्मा निखर जाए। ये 3 दिन का आपका ये अनुभव हो, पर अभी तो नहीं पूछा जाएगा, लास्ट दिन आपसे जरूर पूछेंगे। तो हर एक उसी तैयारी में रहे कि मैं क्या सुनाऊंगा, तो अनुभव करेंगे तब तो सुना सकेंगे ना। और कईयों में तो हमने देखा, जो पिछले साल की भी सालों की बठियां चली है, बड़े अचरज के अनुभव सुनाते हैं, क्या क्या उनको अनुभव होते हैं, क्या नहीं परिवर्तन उनके अंदर में आता है, पूरा जैसे चेहरा ही बदल जाता है बिल्कुल, ये भी अनुभव करते हैं। तो खास करके अमृत वेले का तो बड़ा ही महत्व है। मधुबन में बाबा स्वयं अमृत वेला कराते थे, और कैसे सब भाग भाग करके अमृत वेला करने के लिए बाबा के सामने पहुंच जाते थे। देखो, यहाँ पर वैसे इस हॉल का उपयोग तो मधुबन वाले करते हैं, सेवाधारी यहाँ योग करते हैं, सब उनके लिए है, लेकिन उन सबको कहा कि आप लोगों को थोड़ा त्याग करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर में भट्टी चलेगी, इसीलिए ये हॉल केवल आप लोगों के लिए ही है। हा? वो लोग सब शांति स्तंभ पर जाकर के करेंगे, अभी भी शांति स्तंभ पर ही उनका योग होगा, अमृत वेले भी वहीं करेंगे या हिस्ट्री हॉल में करेंगे। तो ये मेडिटेशन हॉल एक्सक्लूसिवली केवल आपके लिए ही है। हाँ, तो देखो उनके त्याग को भी आप थैंक्स देना, नहीं तो वो इसी हॉल में बैठते हैं और बहुत ही पावरफुल वाइब्रेशंस है। पहले हमने कोशिश की थी भाई शाम के समय मधुबन वाले सेवाधारी उनका यहाँ योग होता है, तो जो भट्टी वाले है वो सब ओम शांति भवन में जाए वहां करे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं 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 हमको तो मेडिटेशन हॉल ही चाहिए, हम यहीं करेंगे। हमने कहा वहाँ अच्छा है, सब कुर्सियों पर बैठो, सोफा पर बैठो, नीचे बैठने की जरूरत ही नहीं है, आराम से बैठो। तो कहा नहीं 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 हमको तो यहीं चाहिए, आपको क्या पसंद है, यहाँ या ओम शांति भवन, हाँ क्या चाहेंगे? तो नीचे बैठना पड़ेगा क्योंकि सबको के लिए तो कुर्सियां नहीं होगी। चलो ठीक है, पर इसमें हम देख रहे हैं बहने ज्यादा है, बहने हाथ उठाएं, सभी सभी बहने हाथ उठाएं। अच्छा अभी भाई हाथ उठाएं, थोड़े थोड़े कंपैरेटिवली कम है, तो बहनों की और लाइन लग सकती है यहाँ पर। एक और बात मैं अभी नहीं, और भाई थोड़ा उस तरफ से जाएंगे ना, तो बहनों की कौन यहाँ बिठाने के लिए कौन होगा, कौन टीचर बहने कौन आई है आपकी, कोई और आई है जरा देखना, या किसी को भी ताकि ठीक लाइन में बैठे सब। तब ये तीन तीन करके बैठे ना, चार की लाइन हो भले या तीन की लाइन भाइयों की हो, और फिर बाकी ज्यादा लाइनें आप अंजू बहन, तो ये देखना। और खास करके जैसे ही अमृत वेले आप आए, वैसे तो कई तो 3:30 बजे से ही आ जाते हैं, पर आप सबसे विशेष निवेदन ये भी रहेगा कि बाबा के कमरे में केवल 5 मिनट बैठना, ऐसे नहीं कि पूरा अमृत वेला बाबा के कमरे में ही बैठे। हम विशेष सभी को यही कहते हैं कि अमृत वेला बाबा के कमरे में केवल गुड मॉर्निंग करने के लिए पहले जाएं, 2-3 मिनट बैठे, परंतु योग करना है यहाँ। और अमृत वेले का तो बहुत बड़ा महत्व है, बाबा कहते हैं जैसे सारे कल्प में संगम युग अगर देखा जाए वो अमृत वेले का समय है। तो जिस प्रकार संगम युग का इतना महत्व है, संगम युग पर स्वयं भगवान आते हैं, संगम युग पर हम हरी झोली भरते हैं वरदानों से, संगम युग पर ही हमें पवित्र बनाते हैं, संगम युग पर आत्मा को शक्तिशाली बनाते हैं, चढ़ती कला होती है, ये संगम की जो विशेषताएं हैं वो सब अगर देखा जाए अमृत वेले की विशेषताएं भी है। संगम युग भी सारे जो चक्र का अमृत वेला है ना, सूर्योदय होता है और वो सवेरा होता है, पीएम तो खत्म हो गया, एएम चालू हो जाता है, दिन चालू हो जाता है, भले सूर्योदय बाद में होगा। कई भारत के कई ऐसे स्थान हैं, हम आसाम में गए थे, वहां तो जून महीने में तो 4 बजे ही सवेरा हो जाता है, 3 बजे से लाइट मना उजाला होने लगता है। मैं पहले दिन जैसे ही वहां पर पहुंची तो रात को सोए 4 बजे अमृत वेला करेंगे, तो जैसे वहां खुली तो देखा ये तो उजाला हो गया, मैंने कहा 6 तो नहीं बज गए, अरे इतना सोई हूँ क्या? तो कहा नहीं नहीं बहन जी 3:30 ही बजे, मैंने कहा 3:30 बजे और इतना उजाला? तो कहा ये पूर्व है ना, तो पूर्व में तो पहले सूर्योदय होता है। वैसे अगर नियम अनुसार देखें तो जो लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड होते हैं उसमें वो 1 घंटा पहले होना चाहिए, जैसे अभी 6:30 हुए तो वहां पर 7:30 होना चाहिए, मतलब अभी शाम को जल्दी अस्त हो जाता है, यहाँ अभी 6:30 बजे हो रहा है तो वहां पर जल्दी हो जाएगा, और नहीं तो कई बार ऐसे 3 बजे ही हो जाता है, पता भी नहीं चलता, अरे 3 बजे अस्त हो गया। लंदन अमेरिका जाओ वहां तो ऐसे ही होता है,
रात के 10 बजे तक भी गर्मी के दिनों में उजाला होता है, और सर्दियों में जाओ तो 3 बजे अंधेरा दोपहर को, और सूर्योदय भी देर से होता है। रात को 10 बजे तक तो खाना ही नहीं खाते यूरोप में, ना गर्मी के स्थान है। क्यों? क्योंकि अभी तो उजाला है ना, थोड़ा अंधेरा होने दो, 10 बज गए अभी तक खाना नहीं खा रहे ऐसे। और कहाँ रखेंगे? फ्रिज में खाना रख देंगे, कहेंगे अभी ठंडा होने दो, बहुत गर्मी है उनको ठंडा चाहिए। और यहाँ हम कहेंगे गरम गरम खाओ, इतना अंतर है, बहुत अंतर है। लेकिन अमृत वेला हमारा पावरफुल तब होगा जब पहले रात को हम समय पर सोएं, क्योंकि आपका रात को यहाँ पर जो भी होगा क्लास होगा तो वो तो करके आप सीधा ऐसे 7:30-8 बजे के अंदर तो भोजन हो ही जाता है, और फिर आपका क्लास होगा, पर तुरंत जाकर के आप विश्राम करें। और अगर 10:30 बजे के अंदर सब विश्राम कर लेंगे, आपस में बातचीत तो करनी नहीं है, तो आपका बहुत समय बच जाएगा। और जो बातों में जो टाइम जाता है रात को आपस में बातें करते हैं, वो तो होगा नहीं, इसलिए समय बहुत बच जाएगा। और जो समय बच गया तो उसमें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपना काम। और फिर अगर जल्दी सो जाएंगे तो ठीक 3:30 बजे आपकी आंख खुलेगी, या पहले ही आंख खुलेगी। रात को आप बाबा को कहकर सो, बाबा हम जल्दी उठा देना, तो बाबा बड़े आज्ञाकारी हैं, आप जो बाबा को कहेंगे बाबा आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। और जी हजूर बाबा कहते हैं ना, हजूर हाजिर हो जाता है। कई तो अनुभव सुनाते हैं कि बिल्कुल ऐसी आंख खुल जाती, कोई अलार्म वलार्म रखने की भी यहाँ जरूरत नहीं होती है। परंतु रात को अवश्य अपना पोता मेल समाप्त करके सोना है, ये नहीं कि कैरी फॉरवर्ड करना है अगले दिन के लिए। अकाउंट्स में तो कैरी फॉरवर्ड करते हैं ना अगले दिन के लिए, लेकिन यहाँ नहीं करना है। जो सब दिन भर जो कुछ हुआ वो सब बाबा को बता करके बिल्कुल खाली हो जाना, एकदम खाली, और बाबा की गोद में सो जाना है। देखो इतनी अच्छी नींद आएगी जो आपको ऐसे लगेगा कि बस बाबा की गोद में सोए थे, निश्चिंत, जैसे छोटा बच्चा सो जाता है। कोई घर की चिंता लेकर के तो यहाँ नहीं आए हैं ना, ले आए हैं। हाँ, एक बार दादी प्रकाशमणि जी से मीडिया कॉन्फ्रेंस चल रही थी, मीडिया वाले आए थे, तो दादी जी से अखबार वाले ने पूछा कि दादी जी आप इतने हजारों सेंटर संभालते हैं, इतने आपके भाई बहने हैं, इतनी टीचर्स हैं, कितनी सबकी जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी, तो आपको रात को नींद आती है? तो दादी उनको देखती रह गई, कहती क्यों नहीं। तो दादी ने कहा क्यों नहीं आएगी नींद, नींद तो बहुत अच्छी आती है। तो कहा कि इतनी सिर पर जिम्मेदारियों का बोझ है तो नींद कैसे आती है। तो दादी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, मैं जब बिस्तर पर जाती हूँ तो मैं बाबा को कह देती हूँ, बाबा ये तो सब आपका है, मेरा कुछ नहीं है, मैं भी आपकी हूँ, मैं तो छोटा बच्चा हूँ। तो मैं जैसे ही मैं जाती हूँ, मैं बाबा को सब कुछ सौंप करके छोटा बच्चा बन करके बाबा की गोद में चली जाती हूँ, और क्यों नहीं आ जाएगी, तुरंत नींद आ जाती है। तो बड़े प्रभावित हुए दादी से ये ऐसे अनुभव सुनकर दादी का, कि इन्होंने दादी प्रकाशमणि को देखा था हाथ उठाएं। अच्छा, पुराने ही है, कोई नए भी होंगे जिन दादी को नहीं देखा था, दादी प्रकाशमणि को हाथ उठाएं। अच्छा है होंगे, क्योंकि दादी जी को तो 8 साल हुए, परंतु उसके बाद जो आए होंगे उन्होंने नहीं देखा होगा। तो ऐसे थे, एक बार किसी ने दादी जी से पूछा कि दादी जी इतना बड़ा आपका ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी बड़ी संस्था है, आप इसको कैसे मैनेज करते हो, कैसे चलाते हो? आज किसी व्यक्ति की 2 दुकान होती है, 3 दुकान होती है, 4 बच्चे होते हैं, या जो भी छोटी मोटी गृहस्थी होती है, परिवार होता है या जिम्मेदारी होती है, तो भी लगता है बड़ा बोझ है, बहुत बोझ लगता है। आप कैसे ये चलाते हो, आपका एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका क्या है? तो दादी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, दादी ने कहा मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ, इतने बड़े मीडिया वालों को, मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ, क्योंकि और भी सारे वरिष्ठ भाई बहने बैठे थे, ये सब करते, मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ। इतनी निर्माण होकर के दादी ने कहा कि मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ। वास्तव में क्यों नहीं दादी करते थे, लेकिन दादी इतने हल्के भी थे, क्योंकि विश्वास था, हर एक के ऊपर विश्वास था। वो विश्वास के कारण इतनी कैसे ये संस्था आगे बढ़ी। किसने ये भी प्रश्न किया दादी से कि दादी आपकी संस्था इतनी आगे कैसे बढ़ रही है, तो दादी ने एक शब्द जवाब में दिया, विश्वास। मैं सब पर विश्वास रखती हूँ, आजकल विश्वास की कमी है। मैं इसको पैसे दूंगी, पता नहीं हड़प तो नहीं लेगा, खा तो नहीं जाएगा, मुझे धोखा तो नहीं देगा, यानी इतना नेगेटिव सोचते हैं। और उस व्यक्ति के मन में नहीं भी होगा ना, तो भी हमने सोच लिया तो उसके मन में भी आ जाएगा। लेकिन विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है, और अगर वो विश्वास है तो वो भी विश्वास रखेंगे, क्योंकि हमारी जैसी मनस्थिति होगी या जैसे हमारे वाइब्रेशंस उस तक पहुंचेंगे, उसका भी उसी रूप से उसको लेंगे और वैसा ही उनका भी एक्शन होगा। तो इसीलिए दादी ने कहा विश्वास, इसी के आधार से ये संस्था कैसे दिन दुगनी रात चौगनी गति से आगे बढ़ रही है। और हर एक के अंदर ये लगन है कि मुझे ईश्वर का कार्य करना, ये मेरा कार्य नहीं है, ये भगवान का कार्य है। हर एक ईश्वर का कार्य है ये समझ करके कर रहा है। तो बाबा भी तो कहते हैं ना, आप गृहस्थी अपने को क्यों समझते हो, क्या हो आप, क्या हो, ट्रस्टी हो। तो जो ट्रस्टी है तो वो ट्रस्टी होने के कारण वो जो बोझ वो नहीं महसूस करता है, इसलिए ट्रस्टी ने बन जाओ। माताओं को तो बाबा कहते हैं आप माता हूं ये मत समझो, मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ। ब्रह्मा कुमारी तो कुमारी हो गई। और जो कुमारियां टीचर्स थी, बाबा उनको कहते थे आप अपने आप को जगत माता समझो, तो कुमारियों को कहा जगत माता समझो, और माताओं को कहा कुमारी हो, ब्रह्मा कुमारी हो। तो माताओं को कुमारी बना दिया और कुमारियों को जगत माता बना दिया। तो ये क्या कि कुमारी अपने आप में ये सोचते मैं तो कुमारी हूँ, मैं तो छोटी हूँ, मैं तो, यानी अलबेले हो जाते हैं। तो अलबेले भी नहीं बनना है, जिम्मेदारी पूरी लेनी है, पर जितनी जिम्मेदारी लेते हैं उतने ही ट्रस्टी बनकर के हल्के भी रहते हैं। जिम्मेदारी कैसे दूसरों को भी सौंपनी होती है और खुद न्यारा भी रहना होता है, ये लीडरशिप की क्वालिटीज है। और लीडरशिप में ये भी होता है कि करके कराना है, ये नहीं खाली ऑर्डर करना है। तो जो स्वयं उदाहरण बनता है वो औरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। अगर हम ही अमृत वेले सोए रहें और दूसरों को कहे अमृत वेले उठो, अमृत वेले उठो, तो क्या उठेंगे। हम औरों को कहते क्लास करो और हम ही नहीं कर रहे हैं, तो कहेंगे पहले आप तो करो। हमारी बड़ी दीदी थी, वो नंबर वन स्टूडेंट थी, नंबर वन स्टूडेंट, नोटबुक पेन सदा अपने साथ रखती थी, नंबर वन स्टूडेंट। मुरली से प्रश्न निकालती थी, अब ये जो मुरली में प्रश्न है ना जो आते हैं, ये सब बड़ी दीदी हमारी निकालती थी। राजू भाई ने उनसे सीखा कैसे मुरली से प्रश्न निकालना होता है, प्रश्न उत्तर कैसे लिखना होता है। और जो आता था पहले 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 आया मधुबन आया, पहले दीदी मिलती थी, बड़ी दीदी मिलती थी, और दीदी उनसे पहले उस दिन की मुरली का प्रश्न पूछती थी। मुरली तो उसने सुनी नहीं, क्योंकि वो तो ट्रेन में था और पहुंचा, तो दीदी ऐसे उनसे पूछ करके उनको फेल कर देती थी, क्योंकि बाबा की पॉइंट तो अलग ही होगी, भले प्रश्न तो साधारण होगा लेकिन बाबा का जो उसमें उत्तर होगा वो तो बिटवीन द लाइंस होता है, यानी पता नहीं चलता तुरंत, पर वो बाबा के शब्दों में ही कहना वो तो मुश्किल होता है। तो इसीलिए दीदी इस प्रकार परीक्षा लेती थी, और नंबर वन स्टूडेंट, सबसे पहले जाके बैठेंगे योग में चाहे क्लास में, और सब दीदी से डरते थे बहुत, हाँ दीदी आ गई होगी, दीदी आ गई होगी। तो ऐसे हमारी दीदियां दादियां, और बाबा तो नंबर वन थे, मम्मा भी नंबर वन ही थी, तो देखो वो कितना आगे चले गए। तो हमको क्या करना है, कोई भी ये न सोचे मैं तो लेट आया हूँ,
मैंने बाबा को नहीं देखा, मम्मा को नहीं देखा, मैं इतना पुरुषार्थ कर सकूंगा नहीं कर सकूंगा, कभी नहीं ये नहीं सोचना, क्योंकि ये तो ऐसी मैराथन रेस है, लंबी रेस है। तो इस रेस में ऐसा नहीं कि बस दो मिनट में रेस पूरी हो जाएगी, कई होते ना मैं 10 किलोमीटर की रेस होगी तो फटाफट फटाफट आ जाते हैं, लेकिन आप तो जीवन भर है, तो कोई सोचते हम तो लेट आए, हम कहते नहीं कोई लेट नहीं आए, क्योंकि जो लेट आए हैं उनको बाबा दूसरा वरदान देते हैं, क्या देते हैं, क्या, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। परंतु जो पुरानी हैं उनको भी बाबा वरदान देते हैं, ये नहीं जो लेट आए वो लास्ट आए वो सोचे हम तो फर्स्ट जाएंगे और जो पहले आए हैं उनको रिगार्ड न दे, कई ऐसे सोचते हम तो बहुत होशियार है, हम तो ये, हम तो वो, हम तो इनसे आगे जाएंगे देखना, वो भी नहीं। जो पुराने हैं उनके लिए तो फिर और वरदान है, क्या वरदान है पुरानों के लिए, क्या वरदान है नयों के लिए, तो है लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, पर पुरानों के लिए क्या वरदान है, पुरानों के लिए वरदान है ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड बिकॉज इट कैन मोल्ड। जो सोना होता है, सच्चा सोना होता है, वो मुड़ सकता है, वो मुड़ सकता है, तो इसीलिए जो पुरानी है वे कितने सालों से चले आ रहे हैं, कितनी उनके जीवन में बाधाएं आई होगी, कितनी परीक्षाएं आई होगी, कितना सहन किया होगा, कितना समाया होगा, लेकिन वो सब सहन करके समा करके अभी तक उसी स्थिति में है, उसी उमंग उत्साह में है, तो कितना उनका रिस्पेक्ट हम रखें, कितना हम उनको आदर दें। हाँ, ये नहीं हम तो होशियार है ज्यादा इनसे, आजकल तो युवा पीढ़ी यही समझते ना, बूढ़े क्या जाने हमारे जैसे, तो एक चुटकुला भी बताते हैं कि एक पोतरा अपने दादा से पूछता है, दादाजी आप कैसे जीते थे, देखो हमारे जमाने में ये व्हाट्सअप है, ये फलाना है, ये है आईपैड आईपॉड, वो सारी बातें बोलने लगा, दादाजी आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आप लोग कैसे रहते थे इन सब के बिना। तो दादाजी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, दादाजी ने कहा हमको तो ये आश्चर्य लगता है कि जीवन में सहन शक्ति नहीं है, समाने की शक्ति नहीं है, ये गुण नहीं है, ये गुण नहीं है, ये आप लोग जीते कैसे हो, समझ गए, यानी वो जो वैल्यूज चाहिए जीवन में, वो वैल्यूज तो आजकल ये जवानों में कहाँ है, इसी को नहीं पूछते हैं, जैसे समझते हैं हम ही सब कुछ है, बड़ों का तो जरा भी आदर नहीं करते, समझते ये जनरेशन गैप है, ये बड़े हमारा समझेंगे नहीं, पर वो ऐसे ही थोड़ी जीवन पास किया है उन्होंने, तो इसीलिए उनका भी रिस्पेक्ट रखना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए बड़ों के लिए, पुरानों के लिए फिर ये है, ओल्ड इज गोल्ड बिकॉज इट कैन मोल्ड, जो पुराने है वो सच्चे सोना है, सच्चा सोना है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में ये सब देखा, उनसे हमें सीखना है, वो उदाहरण है हमारे आगे। तो इसीलिए पुराने हो या नए हो, सबको सम्मान देना है, क्योंकि सब बाबा के बच्चे हैं। उस दिन हमारी मीटिंग में एक बात निकली थी, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की बातें चल रही थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बेटी की बातें बहुत हो रही थी, तो निर्वैर भाई ने एक अच्छी बात कही, उसने कहा कि बेटा बचाओ ये भी होना चाहिए, कहा बेटा बचाओ तो कभी नहीं सोचा होगा। तो उसने एक उदाहरण दिया कि एक परिवार अखबार में आया था, उसको दो बेटियां थी, दो माना बेटे थे, तो उसने कहा मुझे भी बेटी चाहिए, बेटा दो बेटे तो थे, बेटी चाहिए, परंतु तीसरा भी बेटा हो गया, तो उसने क्या किया, खुद अपने बेटे को गला दबा करके मार डाला, अपने बेटे को, बेटा हाँ बेटी नहीं बेटा। तो जब उससे पूछा गया तो कहा नहीं मुझे तो बेटी चाहिए थी, मतलब एक पता नहीं बात तो सही होगी, अखबार में आया था, तो कहा कि बेटा बेटी को दोनों को बराबर देखो, ये नहीं कि खाली बेटे को देखो या बेटी को देखो, दोनों को बराबर देखो। तो अभी एक नया और प्रोग्राम शुरू हो रहा है कि दोनों को समान दृष्टि से देखो, बेटा हो या बेटी हो, दोनों को समान, ये भी बहुत जरूरी है। तो इसीलिए क्योंकि बाबा तो हमको वही सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं, आत्मा आत्मा भाई भाई, देह को देखो ही नहीं,
वो तो चलो फिर भी देह को देखते हैं। तो इसीलिए आप सभी यहाँ आए हो तो इस मौन तपस्या भट्टी में तपना है, पकना है, अपनी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, स्थिति किस प्रकार का परिवर्तन लाना है। एक एक आपकी जो भी शुरू करो अपनी स्मृति से, क्योंकि स्मृति के आधार पर ही वृत्ति बनती है, वृत्ति के आधार पर दृष्टि बनती है, दृष्टि के आधार पर फिर कृति बनती है, कर्म बनता है, फिर ही पूरी सृष्टि बनती है। तो इसीलिए बीज है हमारी स्मृति। तो जब भी किसी को देखो तो क्या स्मृति में आए, कोई पुरानी बातें याद न आए। हो सकता है किसी का किसी से कुछ मन मुटाव हो, कुछ भी हो, पुरानी बातें हो, तो बाबा कहते हैं वो अभी सबको बिंदु लगाना है। तीन बिंदु तो बाबा ने बता ही दिए। तो इसीलिए तीन बिंदु कैसे लगाएंगे, यहाँ कैसे एक दो को केवल उसी आत्मिक दृष्टि से देखना है बस, और कोई दृष्टि यहाँ हो ही नहीं। भले युगल रूप में है, लेकिन युगल रूप में भी वो दृष्टि नहीं हो कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये संकल्प भी मत लाओ यहाँ, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। यज्ञ के अंदर तो देखो बाबा शुरू में इतने स्ट्रिक्ट थे, कैसे बाबा ने दृष्टि बदल दी। जो माँ थी वो बेटी बन गई, मम्मा की लौकिक माँ रहती थी, साथ में थी, पर वो माँ भी मम्मा को मम्मा कहे, मानो बेटी को मम्मा कहे। बाबा की लौकिक पत्नी, बाबा की लौकिक पत्नी बाबा कहे, और बाबा उसको बच्ची कहे, ना पत्नी को बच्ची कहे और पत्नी अपने पति को बाबा कहे। आप समझ गए ना कैसे दृष्टि सारी बदल गई, तो पूरी सृष्टि बदल गई, सब कुछ बदल गया। तो इसलिए कुछ भी लौकिक का जो स्वरूप है वो ना हो, क्योंकि बाबा हमें अलौकिक बना रहे हैं, अलौकिक से भी पारलौकिक बना रहे हैं। और घर जाना है, संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, तो पहले तो आत्मिक स्थिति चाहिए। वो स्थिति पहले कैसे बनेगी, स्मृति से, फिर स्मृति से वृत्ति से, वृत्ति आएगी, वृत्ति से ही वही दृष्टि होगी। तो जिसको भी देखो, चाहे कोई भी हो, आत्मा हो, ये नहीं मेरी ये बेटी है, ये बेटा है, ये पति है, ये भाई है, सब आत्माएं। फिर बाबा ने यही दृष्टि हमारी बनाई, विश्व को एक कैसे किया, सारा विश्व एक है, परिवार है। दुनिया में भले कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई भारत में कहते हैं, लेकिन भाई भाई समझते कहाँ हैं, लड़ते ही रहते हैं। पर भाई भाई की दृष्टि तब बने जब आत्मा की दृष्टि हो, नहीं तो भाई भाई की दृष्टि कहाँ बनती है। इसलिए बाबा ने आत्मिक दृष्टि बनाई, और एक के ही हम बच्चे हैं, ये एक एक की लगन, एक में मगन, एक देसी वृत्ति, एक दृष्टि, ये एकता के सूत्र में बांधने के लिए ये एक को महत्व दिया है, तभी तो ये एक विश्व परिवार बन गया। कैसे बना, सतयुग के देवताएं जो सतयुग के आदि में थे, त्रेता अंत के बाद कैसे सब बिखर गए, सारी दुनिया में चले गए। प्रत्येक अखंड भारत था, जो बाबा कहते उस समय लक्ष्मी नारायण का राज्य था, लेकिन कैसे द्वापर युग आते ही सब बिखर गए, बिखर गए, देश भी बिखरता गया, बिखरता गया, अखंड भारत सब बढ़ता गया, बढ़ता गया, और फिर बाबा के जो सतयुगी देवताएं थे सारे विश्व में फैल गए। अभी जो बाबा कहते हैं उनको निकालना है, तो दुनिया के कोई एकदम एकदम दूर का कोना होगा, वहां भी कोई ना कोई बाबा का बच्चा होगा ही, सचमुच हम देखते हैं। इसलिए बाबा कहते कोई भी दुनिया का कोना भी नहीं छोड़ो, कहां बाबा के बच्चे ढूंढ रहे होंगे बाबा को, इसलिए सब जगह सेवा करो। तो फिर से वही विश्व परिवार बना रहे, एक विश्व परिवार। कैसे बनेगा विश्व परिवार, जब दृष्टि हमारी सबके प्रति आत्मिक होगी। यही तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय की विशेषता है कि यहाँ पर कोई धर्म भेद, जाति भेद, भाषा भेद, रंग भेद, प्रांत भेद, ये सब है ही नहीं, कोई भेद नहीं है। बाबा ने भले सिंध में सब शुरू किया, लेकिन बाबा ने एकदम यज्ञ में मना किया, कोई आपस में सिंधी में बात नहीं करेगा। वैसे भी सिंधी लोग पापड़ बहुत खाते थे, तो कहा सिंधी पापड़, सिंधी बोला पापड़ बन बोले ऐसे चुटकुला है ये, परंतु आजकल तो कोई खाते नहीं, मुश्किल से खाते। परंतु कहने का भाव है बाबा ने बंद किया, बाबा ने सिंधी में बोलना ही बंद कर दिया, मम्मा ने बंद किया, तो सब यज्ञ के अंदर कोई सिंधी में बोलता नहीं था, क्योंकि सब सिंधी थे। अब आप लोग सब गुजराती हो तो आपस में क्या गुजराती में बोलेंगे, बोलना ही नहीं है, तो चलो भाषा भी भूल जाओ लेकिन ये जरूर है कि मौन में रहना है, परंतु विचार तो फिर भी गुजराती में ही चलते होंगे ना, क्योंकि गुजराती है बोल आपकी मदर टंग तो वही है। परंतु बाबा कहते इससे भी परे चले जाओ, बस आत्मा की भाषा क्या है, आत्मा की भाषा क्या है, हाँ? शांत, ये आत्मा की भाषा है, साइलेंस। तो इसी भाषा को अनुभव करो, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शुद्ध स्वरूप हूँ। तो ये हर वक्त सुबह से लेकर रात्रि तक उसी स्थिति में रहो, उसी भावना में रहो, उसी दृष्टि में रहो, उसी वृत्ति में रहो, और एक ईश्वरीय परिवार है ये रहे, तो देखो वसुधैव कुटुंबकम की बहुत सुंदर अनुभूति हम यहाँ मधुबन में करते हैं। तो वन वन की काठी है, कई लोग हम लोगों से पूछते इतने सारे अलग अलग जाति, अलग ये स्टेट्स के भाई बहने, अलग भाषाओं के भाई बहने यहाँ रहते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही स्टेट के रहते हैं, तो इतने सब इकट्ठे रहते हैं, आप लोग कभी लड़ते झगड़ते नहीं हो क्या, इसे बहुत पूछते हैं। तो हम कहते देखो लड़ाई झगड़ा किस आधार पर होता है, दो बातों के कारण। पहली बात होती है ये तेरा और मेरा, तेरा मेरा इसमें झगड़ा होता है। अब यह हमारा तो कुछ है ही नहीं, बाबा ने ये सब सिखा दिया, ये शरीर भी मेरा नहीं है, यही अपना अभ्यास करो, ये देह भी मेरी नहीं है, बाकी बातें तो छोड़ो, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा 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 ये शब्द भी भूल जाना होता है, बाबा 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 हर वक्त बाबा, तो फिर मेरापन कहाँ आया, तो फिर झगड़ा क्यों होगा। अगर है माना अभी तक मेरापन भूला नहीं है, तेरा मेरा आ गया। और दूसरा मुख्य कारण होता है कि हम सोचते दूसरा बदले, मैं नहीं बदलू, मैं तो ठीक हूँ, पर ये इसके कारण, ये बदले इसके कारण मुझे ये हुआ, इसके कारण मुझे हुआ। तो बाबा कहते ये तो ये बिल्कुल गलत सोच है, हर एक का कर्म उसके साथ है, वो कितना भी चलो दुख देने की कोशिश करे, मैं लू नहीं, बस बात खत्म। पुरानी बातें याद करके मनुष्य अपने को ही दुख देता है, तो इसीलिए बाबा कहते आप मुए मर गई दुनिया, जो व्यक्ति मर जाता है उसकी तो दुनिया मर गई ना, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी, उसको तो पता भी नहीं चलता है कैसे आत्मा निकल गई, कैसे निकल गई, तो उसको थोड़ी होता है कि यार मैं मर गया, ये थोड़ी सोच चलता है, वो तो आत्मा तो अमर है, वो शरीर तो है ही विनाशी, पर दूसरे कहेंगे कि ये मर गया, क्योंकि वो तो शरीर को देखते है ना, आत्मा को तो समझ पता नहीं, वो तो और ही स्वतंत्र हो गई। दादी जान की अपना अनुभव सुनाती है, वो एक उनका लंदन में एक भाई है, तो उसने एक किताब लिखी है, आई नो हाउ टू लिव एंड आई नो हाउ टू डाई, मुझे जीना भी आता है मुझे मरना भी आता है, तो मरना भी कैसे और जीना भी कैसे, तो मरना है तो एक सेकंड में आत्मा देह से न्यारी हो गई, और जीना है तो सबके साथ मिल करके जीना है। इसलिए मधुबन इस शब्द में ही दोनों समाया, मधु माना मिठास प्रेम और बन माना वैराग्य एकांत सन्यासी, बन सन्यासी कहाँ रहते जंगल में रहते हैं, तो मधु और बन, मधु माना प्रेम का स्थान, तो इसीलिए प्रेम का स्थान मिठास का स्थान इतना हो, जो जैसे मधुमक्खी इतना इतना शहद कैसे बनाती है, एक अकेली मधुमक्खी बना सकती है क्या शहद, कितनी मधुमक्खियां चाहिए एक शहद का, वो ये क्या वो जो बी हाइव बनाते हैं कितनी होती है उसमें, तब उसमें शहद बनती है। तो इसके लिए मधु माना मिठास, पर वो मिठास के लिए संगठन चाहिए, प्यार प्रेम चाहिए, और बन माना एकदम एकांत अकेले, तो संगठन में रहते हुए भी अकेला अनुभव कर सको, और अकेले भी हैं तो भी अकेले नहीं हो, बाबा साथ है। इसलिए इंग्लिश में हम दो शब्द कहते हैं, एक शब्द है लोनलीनेस, एक शब्द है सॉलिट्यूड, एक है एकांत और एक है अकेला। तो एकांत तो बहुत अच्छी चीज है, पर अकेला हूं अकेला हूं तो कई लोग अकेलापन अच्छा नहीं पसंद कर, अकेला, और कोई कहते नहीं अकेला नहीं हो, पर एकांत हमको चाहिए। अकेले नहीं है क्योंकि बाबा हमारे साथ है, तो अकेले कहां है, अकेला शब्द कहेंगे तो दुख होगा, इसलिए बाबा मेरे साथ है। और एकांत प्रिय है तो सब आवाजों से परे, बस मैं और मेरा बाबा और कुछ भी बुद्धि में नहीं, तो सबके बीच में होते हुए भी मैं एकांत में हूं, अकेला हूं बाबा के साथ, और अकेले हैं तो भी मैं अकेला नहीं हूं, बाबा मेरे साथ है। तो एकांत का भी अनुभव करना है, संगठन का भी अनुभव करना है, सब कुछ अनुभव करना है, चारों धामों की यात्रा भी रोज करनी है, वो भी आपके टाइम टेबल में आपको सब बताएंगे, और उसके आधार से अपना तीन दिन उसका एक एक क्षण सफल करना है, ताकि यहाँ से आप जब जाएं तो महसूस करें कि सचमुच हम इतनी भट्ठी में पके और बदल के जा रहे हैं, कठोर से कठोर संस्कार भी सब बदल गए, दृष्टि वृत्ति स्मृति स्थिति कृति सब कुछ परिवर्तन, एक नया जीवन एक नया अनुभव करके जा रहे हैं, ताकि जहां भी आप जाओ फिर वहां यहाँ का जो अनुभव है वो औरों तक पहुंचाओ, ताकि वो भी आपके अनुभव से अनुभवी बन जाए। ठीक है, हाँ ठीक है, किसी को कुछ प्रश्न तो नहीं है, फिर भी कृति बहन आपके साथ है, कुछ भी बात हो आप उनसे जरूर बात कर सकते हैं, वैसे मौन रहना आपस में नहीं, कुछ भी अगर बात है तो आप कृति बहन को जरूर बता सकते हैं, वो सारा समय आपके साथ है और हम भी हैं, मिलते रहेंगे, पर दृष्टि से नैन से मुलाकात होती रहेगी, मुस्कुराते रहेंगे, पर मौन में रहना है, हाँ ये जरूर पक्का रखना। ठीक है, चलो, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हाँ जरूरत नहीं, बस एक हाथ की ताली, कहाँ गई है कृति बहन, कहाँ गई, 7 बजे दादी जी आ रहे हैं, किसी को कुछ, और जैसे आप आएंगे तो ये चप्पल जो है ना आपके सब लाइन में रखना, आपको बताएंगे, और पानी का बहुत ध्यान रखना है, पानी की बहुत तंगी है, ये सब बातें आपने नोट की है ना, पानी का भी बताना है ये, क्योंकि नीचे से टैंकर भर के ऊपर आते हैं, यहाँ तो पानी बहुत कम है, वैसे तो यहाँ हमारे वाटर डिपार्टमेंट वालों ने कहा यहाँ बठिया मत रखो, लेकिन मुन्नी बहन कही नहीं नहीं रखेंगे, जरूर रखेंगे, क्योंकि तो पानी की बहुत शॉर्टेज है, इसलिए इसका पूरा ध्यान रखना और कम से कम पानी यूज करना, बाकी बिजली का भी ध्यान रखेंगे, और भी कई बातें हैं आप बताएंगे ना सारा, पानी का तो रोज ध्यान करना, क्योंकि समझो अगर पानी नहीं आ रहा है नलके में तो खुला मत छोड़ें, क्योंकि आप चले जाएंगे और फिर टंकी भरते हैं तो पानी बहता रहेगा, इसलिए बंद ही रखिए अगर नहीं भी आ रहा है पानी। ठीक है, बाकी तो सब ठीक है, आराम से पहुंच गए, आपका अकोमोडेशन सब ठीक है, हाँ सब आराम से है ना, तो बस 3 दिन उड़ते रहना, नीचे नहीं आना, नीचे आना ही नहीं, उड़ते ही रहना, तो उड़ती कला या चढ़ती कला तेरे बाने सर्व का भला, सब का भला हो जाए, अगर कोई दूसरा भी आपसे बात करे मानो, पर आप शांत रहो, अब मधुबन वाले तो करेंगे बात, पर आप उनके आगे भी शांत रहो, ऐसे नहीं कि वो बात किया इसलिए मैंने उनसे बात की, पर कुछ जरूरी है तो इशारे में भी कह सकते, ऐसी बात नहीं है, परंतु लक्ष्य तो बहुत पक्का हो कि मुझे मौन में रहना है, मुझे तपस्या करनी है और ये मेरा संस्कार मैं बिल्कुल बदल के जाऊं, और खास अमृत वेले विशेष मैं और मेरा बाबा और कोई नहीं, सवेरे वो शक्ति भरेंगे तो सारा दिन आपको मदद मिलेगी। अच्छा, ओम शांति।
आदरणीय शीलू दीदी जी का हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं, और साथ ही ये उम्मीद करते हैं कि हमें फिर से एक बार और भट्टी के दौरान दीदी जी से योग की गहराई के विषय पर और भी क्लास मिल पाए। थैंक यू दीदी जी।